श्री केशव मिश्र प्रणीता तर्क भाषा न्याय वेदांताचार्य श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी विरचित चिदानंदी संस्कृत हिंदी टीका द्वय समलंकृता भूमिका श्री सच्चिदानंद मिश्र नव्य न्यायाचार्य प्रकाशक भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी भारत दिल्ली प्रकाशक भारतीय विद्या प्रकाशन एक पोस्ट बॉक्स नंबर 1108 कचौड़ी गली वाराणसी 221001 दूसरा 1UV जवाहरनगर बंगलोर रोड दिल्ली 110007 संस्करण 1997 मुद्रक जैन अमर प्रिंटिंग दिल्ली स्वर्गीय पंडित सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जन्म 10/7/1918 मृत्यु 9/8/1995 शुभाशीर्वाद यस्य प्राचीनयाश्रयां सुरचितां टीकामिवेन्दु प्रभां दृष्ट्वा शिष्टजनप्रियामपि मया हर्षान्विते नादरात् आशीर्वाद गणः सदा शुभफलस्तूर्णं नव श्रीमते न्यायाचार्य सुरेंद्रनाथ विदुषे तस्मै शते दीयते काशी हिंदू विश्वविद्यालय न्याय प्रधानाध्यापक श्री वामाचरण भट्टाचार्य भूमिका गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे कहकर किसी कवि ने ठीक ही कहता है। जिस काल में अन्य देशों में सभ्यताएं और संस्कृतियां विकास की पहली सीढ़ी पर पदन्यास कर रही थी, मिस्र देश में पिरामिडों के निर्माण के द्वारा जीवन के फिर लौटने वाले वसंत के स्वागत की अंधविश्वास पूर्ण प्रथाएं प्रचलन में थी और देशों में तो शायद सभ्यता के प्रकाश में आंखें भी नहीं खोली थी। उस काल में इस सस्य श्यामला भारत भूमि पर वेदों की ऋचाएं गाकर ऋषियों और मुनियों ने जीवन के जटिलतम प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए थे। मेरा अपना तो यही मानना है कि सभ्यता और संस्कृति का प्रथम सूर्योदय भारत के इस भारत ब्रिकट में प्रकाश में रत बराबर तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश की खोज में लीन ब्रिकट बंद देश में ही हुआ होगा। यही देश विश्व गुरु पदवी से विभूषित हुआ, इसलिए मनु जी ने कहा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ब्रिकट में मनुस्मृति। इस देश में उत्पन्न अग्रजन्मा से पृथ्वी में सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा लें। वास्तव में इस देश के लक्ष्य निर्देशक वेदों उपनिषदों पुराणों महाभारत आदि के विचारों उपदेशों की गंभीर दृष्टि जीवन मूल्यों की उद्दाम भावना और लोक कल्याण की उच्च भावना को देखकर यह बात स्वीकारनी ही पड़ती है। नैतिकता का जैसा उच्च आदर्श इस देश के महाकाव्यों में दिखलाई पड़ता है वैसा और कहीं नहीं। जहाँ होमर के इपिक काव्य का नायक एकिलीज अपने शत्रु हेक्टर को मारने के बाद टुकड़े टुकड़े करके अपने रथ में बांध कर नगर में घुमाता है, वहीं रामायण के नायक राम अपने शत्रु रावण की मृत्यु पर भीषण से उसका संस्कार करने के लिए कहते हैं मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्त संस्कारो ममाप्येश यथा तव विकट में वाल्मीकि रामायण। वैर मरण पर्यंत ही होता है, अब हमारा प्रयोजन निवृत्त हो गया है, अब तुम इसका संस्कार करो, अब ये मेरा वैसे ही भाई है जैसे तुम्हारा। उपनिषदों के बारे में सापेन हावर ने कहा है इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। ये न केवल हमारे जीवन के लिए शांति साधक हैं, अपितु हमारी मृत्यु के बाद भी शांति साधक हैं। न केवल सापेन हावर अपितु अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन कहा है। इन्हीं उपनिषदों पर भारतीय दर्शन प्रतिष्ठित है। न केवल 90 न्याय वैशेषिक आदि दर्शन इन पर आश्रित हैं, अपितु चार्वाक बौद्ध जैन आदि दर्शनों के मूल भी अन्नम वही प्राण आदि उपनिषद सूक्तियों में विद्यमान हैं। दर्शन का स्वरूप दृशिर प्रेक्षण धातु से भाव या करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके दर्शन शब्द निष्पन्न होता है, जिसमें भावार्थक ल्युट से निष्पन्न दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, लेकिन देखने का पूरा पूरा वह अर्थ यहाँ पर नहीं है जो अर्थ लोक में प्रसिद्ध है। लोक में दर्शन शब्द का चक्षु से होने वाला प्रत्यक्ष अर्थ होता है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब कभी हम रस्सी को सांप समझते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि वह सांप नहीं रस्सी था, तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करते कि हमने सांप देखा, किंतु हम कहते हैं कि हमने रस्सी को सांप समझा। यहाँ पर सांप को समझने और देखने में कुछ खास अंतर नहीं है। रस्सी को सांप समझना या रस्सी को सांप देखना एक ही है, परंतु व्यवहार में जब हम सांप को सांप समझते हैं तभी कहते हैं कि हमने सांप देखा। इस प्रकार यथार्थ देखना ही दर्शन है, देखना है देखना मात्र नहीं। इस प्रकार हम इस जगत की अनेक वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको पूर्णता वैसी ही नहीं देखते हैं। दुख को सुख ऐसा देखते हैं, अनात्मा शरीर आदि को आत्मा है ऐसा देखते हैं, प्रकट में समझते हैं। इन जागतिक वस्तुओं को उसी प्रकार से जो देखना है जैसी वे वस्तुएं हैं, उस देखने को ही अर्थात यथार्थ दर्शन को ही यहाँ पर दर्शन शब्द से कहा जाता है। लेकिन अंतर यहाँ पर आता है। लोक में देखना दर्शन चक्षुरिंद्रिय मात्र से होता है, परंतु यहाँ पर देखना दर्शन समस्त प्रमाणों से होता है। किसी भी प्रमाण से जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे ही दर्शन शब्द से कहा जाता है। करणार्थक ल्युट प्रत्यय से निष्पन्न दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिससे देखा जाए, अर्थात जिससे यथार्थ दर्शन होता है उसे ही दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द से दोनों ही अर्थ लिए जाते हैं, अर्थात जिससे यथार्थ ज्ञान हो उसे और यथार्थ ज्ञान को दर्शन कहा जाता है। दर्शन का प्रयोजन भारतीय परंपरा के अनुसार प्रयोजन चार के ही होते हैं, जिन्हें की पुरुषार्थ कहा जाता है, विकट में धर्म अर्थ काम मोक्ष। विकट बंद। दर्शनों का भी प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। अधिकांश दर्शनों का प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। यह मोक्ष अमरत्व की प्राप्ति है और मृत्यु के पार जाना है। यह दर्शन से ही हो सकता है, क्योंकि अभी बतलाया ही गया है कि दर्शन का अर्थ यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान होने से ही बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष हो सकता है। अन्य दर्शनों में बंधन का स्वरूप अलग अलग है, इसलिए बंधन निवृत्ति भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कैद में है और मुक्ति चाहता है, तो वह व्यक्ति कब मुक्ति को प्राप्त करेगा, जबकि वह जाने कि वह कैद में क्यों है और कैसे छूट सकता है। जानने के उपरांत तदनुकूल आचरण करने पर वह छूट जाएगा। किसी बच्चे ने खंभे को पकड़ रखा है और वह समझे कि मैं खंभे से बंधा हुआ हूँ, तो उसके लिए सिर्फ इतना जानना ही पर्याप्त है कि वह खंभे से बंधा नहीं, सिर्फ अपने भोलेपन से समझ रहा था कि मैं बंधा हूँ, तो इतने से ही वह बच्चा मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, तरति शोकम्मा आत्मवित, विकट में छांद उत्तराल 4-1-3, विद्या अमृतम सुनुते, विकट में ईशावास्योपनिषद 3-11। कुछ दर्शन जैसे कि चार्वाक आदि मोक्ष को दर्शन का प्रयोजन ही नहीं स्वीकार करते हैं। उनके मत में मोक्ष विकट में जैसा कि न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में स्वीकृत है अलीक पदार्थ है, तथा जैसे मोक्ष पदार्थ विकट में मरणमेवापवर्ग मृत्यु ही मोक्ष है की सत्ता चार्वाक मत में स्वीकारी जाती है, वह मोक्ष किसी को भी अभिष्ट नहीं है, वह पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। उसके मत में पुरुषार्थ दो ही हैं, अर्थ और काम। विकट में अर्थ कामावयव पुरुषार्थो, चार्वाक दर्शन का प्रयोजन भी अर्थ कामांतर्गत ही है। सामान्यतः दर्शन का प्रयोजन मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ ही है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों का सरणि भेद। पश्चिम में दर्शनों के लिए फिलॉसफी शब्द प्रयोग में आता है, जबकि फिलॉसफी और दर्शन शब्दों के अर्थों में पर्याप्त अंतर है। दर्शन शब्द का अर्थ जहाँ यथार्थ दर्शन और यथार्थ दर्शन का करण होता है, वहीं फिलॉसफी शब्द का अर्थ है विद्या का अनुराग, क्योंकि फिलॉस का अर्थ होता है विद्या और सोफिया का अर्थ होता है अनुरागी। इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर फिलॉसफी शब्द बना है। इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ केवल विद्या का अनुराग ही पाश्चात्य दर्शनों में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ भारतीय दर्शनों में टीका प्रतीका उपटीका के क्रम से पूर्व स्थापित सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया जाता है, उन्हीं का मंडन किया जाता है। इस प्रकार दार्शनिकों की बहुलता होने पर भी यहाँ वैसी दर्शनों की विविधता नहीं दृष्टिगोचर होती है जैसी कि पाश्चात्य दर्शनों में दृष्टिगोचर होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय दर्शनों का इस कारण परिपूर्ण विकास नहीं हो सका, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। भारत के जितने दर्शन हैं, उन्हीं दर्शनों में ही अधिकांश दर्शनों के सिद्धांत संगमित हो जाते हैं। केवल विविधता में ही विकास स्वीकार करना उचित नहीं है। किसी विद्वान का मत है कि भारतीय दर्शन जहाँ उपनिषद रूप तटबंधों के सहारे बहती हुई नदी के समान है, वहीं पाश्चात्य दर्शन बिना किसी तटबंध के किसी भी ओर बहते चले जाते हैं। हम समझते हैं कि नदी का बिना किसी तटबंध के किसी भी ओर बहते चले जाना नदी का विकास नहीं कहा जा सकता। भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन का स्थान। भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन का महत्व सर्वोच्चाई है। शायद इसीलिए इस दर्शन की संज्ञा न्याय है। वस्तुतः न्याय का अर्थ होता है प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, न्यायभाष्य सूत्र 111, अर्थात जिसमें वस्तु तत्वार्थ का निर्णय करने के लिए सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाए, उस प्रणाली को न्याय कहा जाता है। इसलिए वस्तुतः न्याय संज्ञा केवल गौतमीय दर्शन की ही नहीं अपितु समस्त दर्शनों की ही न्याय संज्ञा है। परंतु इस पद की रूढ़ी क्यों और कैसे केवल गौतमीय न्याय के लिए प्रसिद्ध हुई, यह विचारणीय है। संभवतः इसकी प्रधानता तर्क प्रवणता सूक्ष्मता के कारण इसकी न्याय संज्ञा हुई, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद इसलिए बौद्ध दर्शन के लिए भी यह संज्ञा दी जाती है और बौद्ध न्याय पद से अभिहित भी किया जाता है। दिंगनांग का न्याय प्रवेश नामक एक ग्रंथ भी उपलब्ध होता है। अथवा चूंकि प्रतिज्ञादि पंचावयवों की भी न्याय संज्ञा है, विकट में न्याय पंचांग मधिकरणम, वात्स्यायन ने भी न्यायभाष प्रथम सूत्र में पंचावयवों को परम न्याय कहा है। न्याय से उन वाक्यों के समूह को अभिहित किया जाता है जो अन्य पुरुष को अनुमान के द्वारा किसी विषय विशेष का बोध करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं। इन्हें परम न्याय कहकर तत्व निर्णय का आधार बतलाया है। साधनी अर्थस्य यावति शब्द समूहे सिद्धि परिसमास्यते तस्य पंचावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहं पेक्षावयवा उच्यन्ते तेषु प्रमाण समवायः आगमः प्रतिज्ञा हेतुरनुमानम् उदाहरणम् प्रत्यक्षम् उपमानम् उपनयः सर्वेषां एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम् निगमनम् इति स्वयं परमो न्याय इति एतेन वात जल्प वितंडाः प्रवर्तन्ते नातो अन्यथेति तदाश्रयाच तत्त्वव्यवस्था। इसमें समस्त प्रमाणों का समावेश है। प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण का, हेतु में अनुमान प्रमाण का, उदाहरण में प्रत्यक्ष का और उपनय में उपमान प्रमाण का समावेश है। इस प्रकार पंचावयव तो निस्संदेह न्यायपद के वाच्य हैं। इनकी प्रधानता गौतमीय दर्शन में होने से गौतमीय दर्शन की न्याय संज्ञा है। इनकी प्रधानता के बारे में इसे ही प्रमाण समझा जा सकता है कि कथा में किसी एक अवयव का प्रयोग न करने पर नून नामक निग्रह स्थान में वादी पतित हो जाता है। विकट में हीनम अन्यत्मेवाप्यवेन न्यूनम, न्याय सूत्र 5:2:12। विकट बंद, दो हेतु या उदाहरण का प्रयोग कर देने पर अधिक नामक निग्रह स्थान होता है। विकट में हेतु उदाहरणाधिक मधिकम 5:2:13। विकट बंद, अवयवों का विपरीत क्रम से प्रयोग कर देने पर अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान होता है। विकट में अवयव विपर्यास वचनम प्राप्त कालम 5:2:11। विकट बंद, इस प्रकार इन पंचावय वाक्यों की प्रधानता के कारण भी इस गौतमी दर्शन को न्याय दर्शन की संज्ञा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन का स्थान सर्वोच्चाई है। यह बात वात्स्यायन ने न्याय भाष्य में न्याय विद्या को सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी कर्मों का उपाय और सभी धर्म का आश्रय कहकर बतलाई है। प्रदीपः सर्व विद्यानां, उपायः सर्व कर्मणां, आश्रय सर्वधर्माणां शश्वतान्वेक्षकीमता न्याय भाष्य प्रथम सूत्र। इस न्याय विद्या का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि विद्वानों में एक उक्ति प्रसिद्ध है, कणादन पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। कणाद और पाणिनी शास्त्र सभी शास्त्रों का उपकारक हैं। इसी तरह गौतम प्रमथितम शास्त्रम सर्वशास्त्रोपकारकम्, यह युक्ति भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कणाद और गौतम प्रमथित शब्द केवल वैशेषिक दर्शन तथा न्याय दर्शन का बोधक नहीं है, अपितु वैशेषिक और न्याय दोनों दर्शनों का उपलक्षक है। इस न्याय विद्या को तर्क विद्या, तर्कशास्त्र, हेतु शास्त्र आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इस कवि ने तो गौतमी विद्या को तृतीय नेत्र की उपलब्धि माना है। जिसे यह विद्या मिल जाती है उसके मस्तक में विधाता भी कुछ अदृष्ट लिपि लिखने में समर्थ नहीं होता है। मिलति नयन अक्ष पाद प्रणिपत नयन ललाट सीम यस्य विजिरे पुरुषस्य तस्य भाले लिखितिम मुद्रिष्टाम लिपिम कुतः क्षमेत। स्पष्ट है कि न्याय विद्या का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी अन्य दर्शन में प्रवेश के लिए न्याय विद्या परम उपकारी है। अतएव यह श्लोक विद्वत समुदाय में अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहम रुणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिम सूते च संस्कृत पद व्यवहार हेतु शास्त्रांतरा भषण योग्यतया युनक्ति तर्कश्रम न कुरुते किम होपकारम। इस प्रकार न्याय विद्या का स्थान भारतीय दर्शनों में अग्रगण्य है। न्याय विद्या का प्रयोजन, जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है कि अधिकांश दर्शनों का प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष, न्याय विद्या भी इसका अपवाद नहीं है, इसका प्रयोजन भी मोक्ष ही है। इस बात को गौतम महर्षि ने प्रथम सूत्र में ही बतलाया है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अयो तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रस्थानानां तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। न्याय सूत्र 1.1.1 प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अयो तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रस्थान, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। यहाँ पर महर्षि का अभिप्राय है कि न्यायशास्त्र के अध्ययन से पदार्थों का तत्वज्ञान होता है और उससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भी आत्म साक्षात्कार के अग्रिम क्षण में ही नहीं होती है, अपितु तत्व साक्षात्कार से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति से राग देश मोहात्मक दोषों की निवृत्ति, दोष निवृत्ति से धर्माधर्म रूप प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति और पुनर्जन्म की निवृत्ति से समस्त दुखों की निवृत्ति रूप अपर्ग मोक्ष प्राप्त होता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानां उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायादपोर्ग। न्याय सूत्र 1.1.2 यह महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत न्याय शास्त्र जगत की विविध यातनाओं से पीड़ित प्राणी वर्ग के कल्याणार्थक ही है, उनकी आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए ही है। इसलिए श्रीमान गंगेशोपाध्याय जी ने अपने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ के प्रारंभ में कहते हैं कि अथ जगदेव दुख पंक निमग्निमुद्धिर्षु अष्टादश विद्यास्यान्येषु अभ्यर्हित तमामान वीक्षिकीम परम कारुणिको मुनि प्रणिनाय। इस प्रकार न्याय दर्शन का परम प्रयोजन मोक्ष है और आनुषंगिक प्रयोजन बुद्धि का विमलीकरण, मोह का रोध आदि है। धर्म का मर्म समझना भी इस न्याय विद्या का प्रयोजन है। बिना न्याय विद्या विकट में वेद शास्त्र विरोधी तर्क के धर्म का मर्म नहीं समझा जा सकता। इसलिए मनु ने कहा है कि आसम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेदनेतरः। मनुस्मृति 12.106 न्याय शास्त्र की दो धाराएं। गौतम प्रणीत न्याय शास्त्र का साहित्य दो धाराओं में विभक्त किया जाता है, जिनकी संज्ञा प्राचीन न्याय और नव्य न्याय है। इनके सिद्धांतों में कोई खास भेद नहीं है। प्राचीन और नव्य संज्ञा केवल विषयों की प्रधानता को लेकर है। प्राचीन न्याय जहाँ प्रमेय प्रधान है, वहीं नव्य न्याय प्रमाण प्रधान है। प्राचीन न्याय की शैली जहाँ सरल है, आडंबर विहीन है और कहीं कहीं इतनी संक्षिप्त और सांकेतिक है कि उसका प्रतिपाद्य विषय अनेक स्थलों में शीघ्रता से बुद्धिस्थ नहीं होता, वहीं नव्य न्याय की शैली विवेचना प्रधान है। विस्तृत आडम्बर पूर्ण तथा ऊपर से दुर्गम दिखाई पड़ने पर भी अर्थतः अत्यंत स्पष्ट होती है। पारभाषिक शब्दावली का परिचय रहने पर विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। प्राचीन न्याय के विषयों का विवेचन जहाँ स्थूल होता है, वहीं नव्य न्याय में सूक्ष्म से परम सूक्ष्म होता है। इसके सिवा दोनों प्रस्थानों में कोई सिद्धांतता भेद नहीं है, केवल प्रमेय या प्रमाण की प्रधानता मात्र से प्राचीन और नव्य संज्ञा है। वस्तुतः मोक्ष के लिए जिन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान अपेक्षित है, उनमें प्रमाण और प्रमेय ही प्रधान है। इन्हीं की प्रधानता से यह संज्ञा द्वय है, लेकिन इन दोनों प्रस्थानों का मूल स्रोत न्याय सूत्र ही है। न्याय दर्शन का साहित्य। न्याय दर्शन का साहित्य यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, परंतु संकुचित भी नहीं है। इसके मूल स्रोत न्याय सूत्रों पर वात्स्यायन कृत भाष्य उपलब्ध होता है, जो विद्वत समुदाय में उसी प्रकार समादर को प्राप्त करता है जिस प्रकार व्याकरण में पतंजलि का महाभाष्य समादर प्राप्त करता है। इस पर अनेक विद्वानों की टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें श्री सुदर्शनाचार्य की प्रसन्न पदा, श्री गंगानाथ झा की खद्योत टीकाएं प्रसिद्ध हैं। न्याय सूत्रों पर श्री विश्वनाथ कृत वृत्ति भी उपलब्ध होती है, जो अत्यंत उपयोगी तथा विद्वानों के समादर का विषय है। न्याय भाष्य पर उद्योत्कर कृत वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र की तात्पर्य टीका और तात्पर्य टीका पर उदयनाचार्य जी की परिशुद्ध न्याय दर्शन के देदीप्यमान मुक्ताओं में से हैं। इसके अतिरिक्त भी वैशेषिक दर्शन के प्रशस्त पाद भाष्य पर किरणावली, लक्षणावली, न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक ये 4 ग्रंथ उदयनाचार्य जी के और मिलते हैं। नव्य न्याय के प्रवर्तक श्रीमान गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि तो तत्व चिंतामणि ही है। यह ग्रंथ एक ऐसी बहुमूल्य मणि है जिसके द्वारा पंडित जनों का मंडन, पाखंड रूपी प्रचंड अंधकार का तिरस्कार, विपक्षी दल का विचार चातुरी का लोप, साथ साथ अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती है। इसलिए इन्होंने स्वयं इस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है कि यतो मणे पंडित मंडन क्रिया, प्रचंड पाखंड तमीस्तरस क्रिया, विपक्ष पक्षे न विचार चातुरी, न च सिद्धांत वचो दरिद्रता। इस ग्रंथ पर न्यायिक शिरोमणि श्री रघुनाथ शिरोमणि को दीदिति नामक व्याख्या, पक्षधर मिश्र की आलोक व्याख्या, मथुरानाथ तर्कवागीश की रहस्य नामक व्याख्या प्रमुख है, और इन तीनों में भी श्री रघुनाथ शिरोमणि की दीदिति नामक व्याख्या अत्यंत प्रौढ़, मूल ग्रंथ के विचारों को अत्यंत संक्षेप में स्फुट करने में साथ साथ कई नूतन विचारों के भी समावेश के द्वारा अत्यंत गंभीर है। आलोक नामक पक्षधर मिश्र की व्याख्या तत्वचिंतामणि के अर्थ को प्रकाशित करने वाली विस्तृत व्याख्या है। मथुरानाथ तर्कवागीश की रहस्य नामक व्याख्या इतनी स्पष्ट और सुबोध है कि तत्वचिंतामणि के रहस्य बुद्धिमान विद्यार्थी को करामलकवत हो जाते हैं। इन्होंने दीदिति और आलोक पर भी रहस्य नामक टीकाएं लिखी हैं। इन तीनों टीकाओं के अतिरिक्त भी कणाद तर्कवागीश की मणि व्याख्या, वर्धमान उपाध्याय की तत्वचिंतामणि प्रकाश, रुचिदत्त मिश्र की तत्वचिंतामणि प्रकाश, शंकर मिश्र का तत्वचिंतामणि मयूख आदि अनेक टीकाएं तथा जगदीश भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य, हरिदास न्यायालंकार, हरिराम तर्कवागीश, रघुदेव आदि अनेक विद्वानों की टीकाएं उपलब्ध होती हैं। रघुनाथ शिरोमणि की दीदिति और पक्षधर मिश्र की आलोक व्याख्या पर भी अनेक विद्वानों की टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें दीदिति पर लिखी गई गदाधर भट्टाचार्य की गदाधरी, जगदीश भट्टाचार्य की जागदीशी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके ऊपर विवृति, गंगा आदि टीकाएं प्रसिद्ध हैं। बच्चा झा द्वारा लिखे गए क्रोड़पत्र तो विद्वानों के लिए निकष ग्रावा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीका, प्रतीका, उपटीका, टिप्पणी आदि क्रम में ग्रंथों की संख्या न्याय में अत्यंत पर्याप्त है। ऐसा भी नहीं है कि विद्वानों ने केवल टीका ग्रंथों का ही प्रणयन किया है, अपितु जगदीश भट्टाचार्य ने तर्कामृत और शब्द शक्ति प्रकाशिका तथा गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। प्रकरण ग्रंथों की परंपरा। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। जिस ग्रंथ में किसी एक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में से किसी एक ही विषय का प्रधानतया प्रतिपादन होता है और साथ ही संबद्ध शास्त्र से अन्य शास्त्र के विषयों का भी प्रयोजनानुसार प्रतिपादन किया होता है, विद्वान लोग उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण ग्रंथ की इस परिभाषा के अनुसार देखते हैं तो पाते हैं कि न्याय शास्त्र के प्रकरण ग्रंथों की संख्या पर्याप्त है तथा इन प्रकरण ग्रंथों की तत्त्व शास्त्रों के पदार्थों को समझने में महती उपयोगिता है। न्याय शास्त्र के प्रकरण ग्रंथों के विभाग अनेक प्रकार से किए गए हैं। पंडित श्री बद्रीनाथ शुक्ल जी ने इनके विभाग चार प्रकार से किए हैं। समझने के लिए इन प्रकरण ग्रंथों को हम दो भागों में बांटना चाहेंगे, न्याय दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथ और वैशेषिक दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथ। जैसा कि इस विभाग से ही स्पष्ट है, प्रथम विभाग में वे प्रकरण ग्रंथ आएंगे जिनमें न्याय दर्शन के पदार्थों की प्रधानता से प्रतिपादन है और दूसरे विभाग में वे ग्रंथ आएंगे जिनमें वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का प्रधानता से प्रतिपादन है। न्याय दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथ। न्याय दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथों में भाषर्वज्ञ ब्रैकेट में 10वीं सती, कृत न्यायसार बरदराज ब्रैकेट में 12वीं सती, कृत तर्क रक्षा केशव मिश्र ब्रैकेट में 13वीं सती, कृत तर्क भाषा शशधर ब्रैकेट में 12वीं सती, कृत न्याय सिद्धांत दीप जयंत भट्ट ब्रैकेट में 10वीं सती, कृत न्याय मंजरी आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। न्यायसार भाष्यवज्ञ प्रणीत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण ग्रंथ है। यहाँ पर न्याय दर्शन की परंपरा से हटकर प्रमाणों की प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये तीन संख्या ही स्वीकार की गई है। ज्ञातव्य है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार हैं। ब्रैकेट में प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाह प्रमाणानी न्याय सूत्र 113। इस ग्रंथ में प्रमाणों का प्रतिपादन मुख्य रूप से है और प्रमेय संशय आदि शेष 15 पदार्थों का प्रतिपादन गौण रूप से है। प्रत्यक्ष के दो भेद किए हैं, यौगिक और लौकिक। यौगिक के दो भेद युक्त और अयुक्त, अयुक्त के भी दो भेद आर्ष और अनार्ष, लौकिक के घ्राणज राशन चक्षुष स्पार्शन श्रावण और मानस ये 6 भेद बताए हैं। मोक्षावस्था में दुख निवृत्ति के साथ शाश्वत सुख का भी समावेश किया है। तार्किक रक्षा नामक प्रकरण ग्रंथ में मुख्य रूप से न्याय दर्शन के सिद्धांतों और पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है और वैशेषिक दर्शन के द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थों का प्रमेय पदार्थ में अंतर्भाव किया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि यदि प्रमेय के अंतर्गत द्रव्यादि वैशेषिक दर्शनात्मक पदार्थों का अंतर्भाव इष्ट है तो अक्षपाद ने अन्य प्रेमियों के साथ साथ इनका भी उल्लेख करके लक्षण और परीक्षा क्यों नहीं की। इस प्रश्न का उत्तर बरदराज जी इस प्रकार देते हैं कि मोक्षे साक्षादनंगत्वादक्षपादैर्न लक्षितं तंत्रांतरानुसारेण षट्कं द्रव्यादि लक्ष्यते। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में साक्षात्करण इन द्रव्यादि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अक्षपाद ने इनकी लक्षण परीक्षा नहीं की, क्योंकि मोक्ष साधक तत्व ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन ही अभिप्रेत था। केशव मिश्र की तर्क भाषा के बारे में हम अभी आगे विवेचन करेंगे। शशधर ने न्याय सिद्धांत दीप नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, इसमें न्याय के विषयों का प्रधानता से निरूपण किया गया है और साथ साथ वैशेषिक के विषयों का भी निरूपण किया गया है। यद्यपि किसी के विषयों का ही साकल्य निरूपण नहीं किया गया है, इनके कुछ प्रमुख विषयों का निरूपण है। जयंत भट्ट प्रणीत न्याय मंजरी गौतम के न्याय सूत्रों की सीधे व्याख्या करने वाली वृत्ति है। जयंत भट्ट के शब्दों में यह न्याय औषधि द्रुमों का रस और आन्विक्षिकी के क्षीर का निसर्ग निर्मल नवनीत है। न्यायौषधि वनेभ्यो अयमाहृतः परमो रसः इदमान्विक्षिकी क्षीरं नवनीतमिवोद्धृतम्। इस ग्रंथ में न केवल न्याय सूत्रों की व्याख्या है अपितु अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव और ऐतिह्य के अतिरिक्त प्रमाणत्व का खंडन चार्वाक बौद्ध जैन आदि के प्रमाणैकवाद प्रमाणद्वैवाद प्रमाणत्रयवाद आदि का खंडन करके न्याय सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना की गई है। प्रसंग प्राप्त अन्य मतों का भी सशक्त निराकरण किया गया है। यह ग्रंथ अपनी शैली भाषा सौष्ठव भावागंभीर्य प्रतिपादन दक्षता आदि के कारण अत्यंत सम्माननीय और महत्वपूर्ण बन गया है। वैशेषिक दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथ। वैशेषिक दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथों में वल्लभाचार्य ब्रैकेट में 12वीं सती की
न्याय लीलावती, शिवादित्य मिश्र की सप्त पदार्थी, विश्वनाथ न्याय पंचानन 17वीं सती का भाषा परिच्छेद, किरणावली, अन्नम भट्ट ब्रैकेट में 17वीं सती का तर्क संग्रह, जगदीश तर्कालंकार ब्रैकेट में 17वीं सती का तर्कामृत, लौगाक्षी भास्कर ब्रैकेट में 17वीं सती की तर्क कौमुदी प्रमुख है। वल्लभाचार्य कृत न्याय लीलावती न्याय और वैशेषिक सिद्धांतों का एक विशाल प्रकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का सम्यक निरूपण किया है। अभाव नामक पदार्थ को अभ्युगम सिद्धांत कहते हुए उसे वैशेषिक दर्शनाभिमत स्वीकार किया है। अभावस्य च समान तंत्र सिद्धस्य प्रतिसिद्धस्य न्याय दर्शने मानसेन्द्रियता सिद्धि वदत्राश्च विरोधाद् अभ्युपगम सिद्धांत सिद्धत्वात् न्याय लीलावती। इस ग्रंथ पर वर्धमान उपाध्याय कृत न्याय लीलावती प्रकाश, रघुनाथ शिरोमणि कृत न्याय लीलावती दीदीति, शंकर मिश्र कृत न्याय लीलावती कंठाभरण आदि टीकाएं उपलब्ध होती हैं। शिवादित्य मिश्र कृत सप्त पदार्थी में वैशेषिक सिद्धांत का न्यायिक सिद्धांतों के साथ मनोरम समन्वय किया गया है। इस ग्रंथ में प्रमाण लक्षण का श्रीहर्ष ने खंडन खंड खाद्य में खंडन किया है। इस ग्रंथ की रचना में शिवादित्य मिश्र ने उदयनाचार्य की किरणावली का पर्याप्त उपयोग किया है। इस ग्रंथ की कई टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें मल्लिनाथ कृत निष्कंटक, माधव सरस्वती कृत मित भाषिणी, सारंगधर कृत पदार्थ चंद्रिका, अवचंद्र कृत शिशुबोधनी प्रमुख है। विश्वनाथ पंचानन कृत भाषा परिच्छेद न्याय और वैशेषिक का सुप्रशस्त प्रकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक व्याख्या भी खुद इन्होंने ही लिखी है, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है, निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी विशदी कर्माणि कौतुकात् ननु राजीव दयावशं वदः। न्याय सिद्धांत मुक्तावली मंगलाचरण। इस ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का निरूपण किया गया है, जिनमें न्याय दर्शन के भी पदार्थों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। यह ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों ही दर्शनों के अध्येताओं के लिए समान रूप से हितकारी है। इस पर महादेव भट्ट भारद्वाज की दिनकरी टीका तथा रामरुद्र भट्टाचार्य की दिनकरी तरंगिणी ब्रैकेट में रामरुद्री नामक उपटीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह लोकप्रियता में अद्वितीय है। यह तार्किक तत्वों के ज्ञान के लिए सरल तथा बोधगम्य ग्रंथ है। न्याय वैशेषिक के अध्येताओं को सर्वप्रथम इसी ग्रंथ का अध्यापन किया जाता है। ये तैलंग ब्राह्मण थे। काशी में आकर इन्होंने ज्ञानार्जन किया तथा काशी में ही स्वर्गवासी हुए हैं। ये अत्यंत विद्वान थे। इनके ऊपर एक सूक्ति ही प्रसिद्ध हो गई है, काशी गमन मात्रेण नानम भट्टायते द्विजः। इस ग्रंथ पर इनकी एक टीका भी उपलब्ध होती है, जिसका नाम है तर्क संग्रह दीपिका। इस टीका के अंतिम भाग में द्रव्यादि पदार्थों में न्याय दर्शनोक्त 16 पदार्थों का अत्यंत सरल और सुंदर रीति से किया गया है। इस पर नीलकंठ भट्ट की प्रकाश, जो कि नीलकंठी नाम से प्रसिद्ध है, और नीलकंठी पर नीलकंठ के ही पुत्र लक्ष्मी नृसिंह की भास्करोदया नामक विस्तृत और प्रमाणिक टीका उपलब्ध होती है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ की न्याय बोधिनी ब्रैकेट में गोवर्धन मित्र और पदकृत्य ब्रैकेट में चंद्रज सिंह टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जो कि पठन पाठन में काफी प्रचलित हैं। यह ग्रंथ अपनी भाषा की सरलता, शैली, सौंदर्य, स्वल्पकाय होने के साथ साथ विषय की संपूर्णता के कारण अति उपयोगी है। इसलिए देश की विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तक के रूप में यह ग्रंथ स्वीकृत है। इस ग्रंथ पर बराबर टीकाएं लिखी जाती रही हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया जा चुका है। जगदीश तर्कालंकार नवदीप के अत्यंत प्रसिद्ध महान्यायिक थे। जागदीशी नामक ग्रंथ इन्हीं का लिखा हुआ है। शब्द शक्ति प्रकाशिका का सम्मान तो विद्वत वृंद जानता ही है, लेकिन अल्पज्ञ अध्येताओं के लिए भी इन्होंने प्रकरण ग्रंथ का प्रणयन किया, जो कि तर्कामृत नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ अत्यंत सरल और प्रांजल है। इसमें भाव और अभाव के भेद से पदार्थों का द्वैविध्य बतलाकर फिर भाव पदार्थों का छह भेद किया है। इस प्रकार सातों पदार्थों का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र की जीवनी के बारे में कुछ भी लिखना अटकल पच्ची के सिवा और कुछ नहीं है। केशव मिश्र ने असिद्ध हेत्वाभास के संदर्भ में उदयनाचार्य का मत उद्धृत किया है। अत्रोदयनेन व्याप्तस्य हेतोः पक्ष धर्मतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभावो असिद्धिरिति असिद्ध लक्षणमुक्तम्। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि केशव मिश्र की पूर्व सीमा उदयन का काल है, जो कि 10वीं शताब्दी मानी जाती है, और उत्तर सीमा तर्क भाषा की टीकाओं के आधार पर निश्चित की जाती है, जो कि 14वीं ईस्वी हो सकती है। ऐतिहासिकों का कथन है कि तर्क भाषा के टीकाकार चिन्नम भट्ट, जिन्होंने तर्क भाषा प्रकाश का टीका लिखी, 14वीं सदी में विद्यमान राजा हरिहर के आश्रित थे। केशव मिश्र के शिष्य गोवर्धन मिश्र के बड़े भाई पद्मनाथ मिश्र ने किरणावली भास्कर में वर्धमान का उल्लेख किया है, जिनका काल 13वीं सदी का प्रथम चरण है। अतः केशव मिश्र का काल 13वीं सदी का तीसरा या चौथा चरण मानना चाहिए। केशव मिश्र प्रणीत अलंकार शेखर नामक भी यह ग्रंथ मिलता है। यह ज्ञात नहीं है कि दोनों के लेखक एक ही केशव मिश्र हैं या दो भिन्न भिन्न। तर्क भाषा केशव मिश्र कृत तर्क भाषा सम्मिलित न्याय वैशेषिक संप्रदाय का प्रकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में न्यायोक्त विषयों की प्रधानता, बालकों को स्वल्प परिश्रम के द्वारा न्याय न्याय में प्रवेश दिलाने के लिए लेखक ने इस ग्रंथ की रचना की है। बालोपियो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछकत्यलशा श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाशते तस्य कृते मय ईशा। अपने इस उद्देश्य में ग्रंथकार पूर्ण रूप से सफल रहा, यह इस ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है। न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों के पदार्थों का संक्षिप्त और सुरम्य शैली में ग्रंथकार ने विवेचन किया है, जिससे न केवल छात्रों को वरन विद्वानों का भी अत्यंत हित हुआ है। यह एक आदर्श प्रकरण ग्रंथ है। इसमें भारतीय दर्शनों के मुख्य मंतव्यों का यथावसर समीक्षा की गई है। जैसे मीमांसा दर्शन के कारण लक्षण का स्पष्टतः निराकरण किया गया है, बौद्धों के क्षणिकत्ववाद का भी निराकरण किया गया है। तर्क भाषा की टीकाओं की संख्या अत्यधिक है और उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा लिखी गई है, जिनमें प्रमुख टीकाएं नामांकित हैं। एक, उज्ज्वला गोपीनाथ कृत। दो, तर्क भाषा भाव राम बिल्व वेंकट बुद्ध कृत। तीन, न्याय संग्रह रामलिंग कृत। चार, सार मंजरी माधव देव कृत। पांच, परभाषा दर्पण भास्कर भट्ट कृत। छह, युक्ति मुक्तावली नागेश भट्ट कृत। सात, तत्व प्रबोधिनी गणेश दीक्षित कृत। आठ, तर्क दीपिका केशव भट्ट कृत। नौ, न्याय प्रदीप विश्वकर्मा कृत। दस, तर्क भाषा प्रकाशिका बालचंद्र कृत। ग्यारह, तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट कृत। बारह, तर्क भाषा प्रकाशिका कौंडिन्य दीक्षित कृत। तेरह, तर्क भाषा प्रकाशिका गोवर्धन मिश्र कृत। चौदह, तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत सार्वभौम कृत। इसके अतिरिक्त भी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में इस ग्रंथ की टीकाएं और अनुवाद उपलब्ध होते हैं। उसी क्रम में प्रस्तुत टीका ग्रंथ भी आता है। तर्क भाषा का प्रतिपाद्य। तर्क भाषा का प्रतिपाद्य प्रमुखता प्रमाण प्रमेय आदि गौतम सूत्रोक्त 16 पदार्थों का निरूपण है। चूंकि यह न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ और वैशेषिक दर्शन के विषयों विकरण पदार्थों का भी ग्रंथकार प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए ग्रंथकार की यह समस्या है कि वह जब्दादि सात पदार्थों का निरूपण किस प्रकार करे। पूर्व में हमने उल्लेख किया था कि वरदराज ने भी अपनी तार्किक रक्षा नामक पुस्तक में न्याय सिद्धांतों का निरूपण करते हुए वैशेषिक पदार्थों का भी प्रमेयांतर्गतत्व निरूपण किया था, जबकि आत्मसरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम् जकड़ में न्याय दर्शन 1.1.3 सूत्र के द्वारा महर्षि गौतम ने प्रमेयों के द्वादश भेदों का प्रतिपादन किया है। इस पर उन्होंने मोक्षे साक्षादनंगत्वा दक्षपादर्न लक्षितम् के द्वारा उक्त आशंका का समाधान किया था। तर्क भाषाकार श्री केशव मिश्र को प्रमेयांतर्गत तत्व ने तार्किक रक्षोक्त क्रम से दिव्यादि पदार्थों का निरूपण उचित नहीं जान पड़ा। संभवतः इसका कारण यही रहा होगा कि तार्किक रक्षाकार के अनुसार दिव्यादि पदार्थों का ज्ञान साक्षात मोक्ष कारण नहीं है, जबकि महर्षि कणाद स्पष्टतः उल्लेख करते हैं कि धर्म प्रसूदात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्यानाम तत्वज्ञानान निःश्रेयसम। विकट में वैशेषिक सूत्र 1.1.4। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पदार्थों के विकट में अर्थतः अभाव के भी साधारण वैधर्म के धर्म प्रसूद तत्व ज्ञान से निःश्रेयस होता है। इसलिए तार्किक रक्षा और वैशेषिक सूत्र का विरोध दिखलाई पड़ता है। अतः केशव मिश्र ने द्रव्यादि पदार्थों का निरूपण अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत किया है। इस कारण इन पदार्थों का तत्वज्ञान भी साक्षात मोक्ष कारण हो जाएगा, जैसा कि वैशेषिक सूत्र में कहा गया है कि लेकिन अर्थ प्रमेय के अंतर्गत द्रव्यादि पदार्थों का भी समावेश करने में न्याय दर्शनकार का भी मत मेल नहीं खाता है। यदि न्याय भाष्य और वृत्ति के अनुसार विवेचन किया जाए, न्याय दर्शन में अर्थ शब्द से इंद्रियार्थों का ग्रहण किया गया है। सूत्र है गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्थाः। न्याय सूत्र 1.1.15। यहाँ पर न्याय भाष्यकार की व्याख्या है, पृथिव्यादीनां यथा विनियोगम गुणा इंद्रियाणां यथा क्रमम अर्थाम विषया इति। इस प्रकार उक्त सूत्र में तदर्था का अर्थ है कि इंद्रियार्था और अर्थ पद का अर्थ है विषय। इसके अनुसार आत्मा शरीर आदि 12 प्रमेयों में अर्थ पद से जिस प्रमेय का प्रतिपादन किया गया है वह इंद्रियार्थ रूप है, और इंद्रियार्थ गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये 5 हैं, जो कि क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 द्रव्यों के गुण हैं। इस तरह न्याय भाष्यकार के अनुसार ये 5 गुण ही अर्थ पद के वाच्य हैं। वृत्तिकार विश्वनाथ को भी यह अभिप्रेत है। इस प्रकार तर्क भाषाकार केशव मिश्र का मत न्याय भाष्य सम्मत तो नहीं है, अतएव न्याय दर्शन सम्मत नहीं है, ऐसा भी प्रतीत होता है। न्याय भाष्यकार वात्स्यायन के अनुसार तो तार्किक रक्षा का प्रमेयांतर्गत ही द्रव्यादि पदार्थों का निरूपण संगत है। जिस प्रकार तार्किक रक्षाकार वरदराज द्रव्यादि पदार्थों के ज्ञान को साक्षात मोक्ष कारण नहीं मानते, वैसे ही वात्स्यायन भी नहीं मानते और लिखते हैं, अस्तिन्यदपि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः प्रमेयम् तद भेदेन चापरिसंख्येयम् अस्य तु तत्त्वज्ञानादपरगो मिथ्याज्ञानात् संसार इत्यत एतदुपदिष्टम् विशेषेणेति। प्रमेय विभाजक सूत्र भाष्य विकट में न्याय दर्शन 1.1.1। यद्यपि इन 12 प्रमेयों से अन्य भी प्रमेय है, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, और इनके अवान्तर भेदों का परिगण करने पर तो अनंत प्रमेय है, परंतु आत्मादि प्रमेयों के तत्व ज्ञान से अपवर्ग और मिथ्या ज्ञान से संसार होता है, इसलिए इन्हीं का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार तार्किक रक्षा का निरूपण न्याय भाष्यानुसार ही है, तथा तर्क भाषा का अर्थ प्रमेयांतर्गत द्रव्यादि का निरूपण न्याय भाषा अनुकूल नहीं है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तर्क भाषाकार का निरूपण न्याय दर्शनानुकूल नहीं है। यह न्यायवार्तिक और तात्पर्य टीका का अनुशीलन करने पर पता लग जाता है। न्यायवार्तिककार उद्योतकर न्याय भाष्यकार वात्स्यायन की उक्त सूत्र पर की गई व्याख्या से सहमत नहीं है। इन्होंने वहां पर प्रश्न उठाया कि पृथिव्यादि गुणा इस सूत्र घटक पद में कौन सा समास है। पृथिव्यादि नाम गुणा व्यकरण में पृथिव्यादि गुण यह षष्ठी समास है। पृथिव्यादीनि गुणाश्च व्यकरण में पृथिव्यादि और इनके गुणधर्म ये द्वंद्व समास है। या पृथिव्यादयो गुणा येषाम व्यकरण में पृथिव्यादि गुण है जिनके यह बहुव्रीही समास है। इस प्रकार अनेक समासों के उत्पन्न होने पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कौन सा समास है, और इस प्रकार प्रश्न उठाकर फिर समाधान किया है कि द्वंद्व समास है, यह यहाँ पर तत्व है क्यों, तो उत्तर दिया है कि षष्ठी यदि समास किया जाए तो दो आपत्तियां आती हैं। पहले तो ये कि पृथिव्यादि इंद्रियार्थ नहीं हो सकेंगे, जबकि पृथिव्यादि इंद्रियार्थ प्रकट में इंद्रिय विषय होते हैं। दूसरी आपत्ति यह है कि विशेषण ही व्यर्थ हो जाएगा। विशेषण का प्रयोजन होता है इतर की व्यावृत्ति करना। गंधादि गुण पृथ्वी आदि के ही गुण होते हैं, अन्य किसी के गुण तो होते ही नहीं। यदि गंधादि अन्य के भी गुण होते तो उनका पृथ्व्यादि गुणा विशेषण से व्यावर्तन होता, ऐसा तो है नहीं। अतः ये विशेषण व्यर्थ पड़ जाएगा, इसलिए षष्ठी समास का उत्पादन नहीं किया जा सकता। बहुग्रीही समास भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्व्यादि किसी के गुण हो ही नहीं सकते हैं। व्यधिकरण बहुग्रीही तो किसी ज्ञापक के रहने पर ही हो सकता है। किसी ज्ञापक के न होने पर व्यधिकरण बहुग्रीही समास भी नहीं किया जा सकता है। इन दोनों से भिन्न केवल द्वंद्व समास ही संभव होने से यहाँ पर द्वंद्व समास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायवार्तिककार वात्स्यायन से सहमत नहीं है। ज्ञातव्य है कि भाष्य में षष्ठी समास स्वीकृत है। इस प्रकार गंधादि पांच गुण प्रकट में गंध रस रूप स्पर्श और शब्द प्रकट बंध पृथ्व्यादि पृथ्वी जल तेज और इनके गुण विकट में आश्रित बराबर धर्म विकट बंध संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व स्नेह वेग कर्म जाति विशेष और समवाय ये यहाँ पर अर्थ शब्द से वाच्य हैं। परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि फिर गंध रूप रस स्पर्श शब्दा पृथ्व्यादि गुणास्तदर्था इतना बड़ा सूत्र बनाने की अपेक्षा पृथ्व्यादि गुणास्तदर्था इतना ही सूत्र रखना उचित है, क्योंकि जैसे संख्या परिमाण आदि का ग्रहण आप कर रहे हैं वैसे ही इन गुणों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस पर वार्तिककार का कहना है कि यह अपेक्ष तो उचित है, परंतु इस प्रकार लघु सूत्र न करके बड़ा सूत्र बनाने का प्रयोजन कुछ और भी है। वह प्रयोजन इंद्रिय विशेष के नियम का ज्ञापन। इनमें इंद्रिय विशेष का नियम है, यही बताने के लिए इतना बड़ा सूत्र बनाया गया है। पृथ्व्यादि के इंद्रियार्थत्व में वार्तिककार ने शास्त्र और युक्ति दोनों ही दिखलाया है। शास्त्र भी है दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणात् ब्रैकेट में न्याय दर्शन 3:1:1 ब्रैकेट बंद और युक्ति भी है कि दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक ही विषय गृहित होता है। इस प्रकार पृथ्व्यादि के इंद्रियार्थत्व का न्यायवार्तिककार ने प्रतिपादन किया है। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथ्व्यादि गुणास्तदर्थाः इत्येतत् सूत्रम् पृथ्व्यादि गुणा इत्येतस्मिन् पदे अनेक समासः सम्भवति कथमिति पृथ्व्यादीनां गुणाः इति षष्ठी समासः पृथ्व्यादीनि गुणाश्चेति द्वंद्व समासः पृथ्व्यादयो गुणाः येषामिति बहुव्रीहि एवम् अनेक समासोपपत्तेः संशयः किमत्र तत्त्वम् इति द्वंद्व समासः इति तत्त्वम् षष्ठी समासस्तावन्न पृथिव्यादीनाम् अनिन्द्रियार्थत्व प्रसंगात् यदि पृथिव्यादीनाम् गुणः इति षष्ठी समासः स्यात् पृथिव्यादीनाम् गंध गुण विशेषणत्वेनोपयुक्तानाम् इन्द्रियार्थत्वम् न स्यात् विशेषणवैयर्थ्यम् च स्यात् इति न हि गंधादीनाम् द्वैराश्यमस्ति पृथिव्यादिगुणत्वम् चान्य गुणत्वम् च यतो विशेषणमर्थवत् स्यात् तस्मान्न षष्ठी समासः गुणिनाम सिद्धिर्न बहुव्रीहि न पृथिव्यादीनाम गुणत्वम प्रसिद्धम् उभय समास प्रतिषेधादन्य समासाभावाच्च द्वंद्वः वयम् पृथिव्यादीनाम इन्द्रियार्थत्वे शास्त्रम् युक्तिश्च सम्भवति शास्त्रम् तावत् दर्शन स्पर्शनाभ्यामेकार्थ ग्रहणात् इति युक्तिरपि दर्शन स्पर्शनयोरेक विषयत्वेन प्रतिसन्धानम् यमहमद्राक्षम् तम् स्पृशामीति दृष्टिस्पर्शनयोरेक विषयत्वेन प्रतिसन्धानम् यमहमद्राक्षम् तम् स्पृशामीति दृष्टिस्पर्शन विषयायुक्तिः शास्त्रम् मस्यस्मिन् पक्षे सम्भवतीति एन्द्रियकत्वाभिधानाच्च सामान्यस्येति तस्मात् सिद्धम् पृथिव्यादीनि गुणाच्चेति द्वंद्व समासः इति पृथिव्यादि ग्रहणेन पृथिव्यप्तेजांसि बाह्यकरण ग्रहण्याप्यदृश्यन्ते गुणग्रहणेन च सर्व आश्रितो गुण इति संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्वापरत्व स्नेह वेग कर्म सामान्य विशेषाः नाश्रितश्च समवायस्तद्धर्मत्वात् गुण इति गंध रूप स्पर्श शब्दास्तदि पृथंग वक्तव्याः गुणग्रहणेन ग्रहणात् गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां पृथक विधानां इन्द्रिय विशेष नियम ज्ञापनार्थं न्यायवार्तिक न्याय सूत्र 1.1.15। तर्क भाषा में केशव मिश्र ने अर्थ पदार्थ को थोड़ा और विस्तृत करके द्रव्यादि पदार्थों का ग्रहण किया है। इस प्रकार यह यद्यपि तर्क भाषाकार की स्वतंत्र व्याख्या है, परंतु फिर भी शास्त्र सम्मत तो है ही। लेकिन एक प्रश्न होता है कि यदि द्रव्य आदि छह पदार्थों का प्रतिपादन करना ही है तो उन्हीं में न्याय दर्शन के प्रमाण आदि 16 पदार्थों का भी अंतर्भाव संभव है, फिर पृथक निर्वचन करने का क्या प्रयोजन है? इस पर उत्तर यह है कि प्रमाणादि पदार्थों के ज्ञान का कुछ विशेष प्रयोजन है, इसलिए उन पदार्थों का विशेष परिचय देने के लिए उनका पृथक निर्वचन है। ऐसी सफाई तर्क भाषाकार ने दी है। अभिप्राय है कि यदि प्रमाणादि पदार्थों का प्रतिपादन इन छह पदार्थों के अंतर्गत किया जाएगा तो न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन से भिन्न एक स्वतंत्र दर्शन नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके स्वतंत्र दर्शनत्व की रक्षा के लिए इसमें प्रमाणादि पदार्थों का पृथक प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ का आरंभ प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावय तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इस सूत्र से किया गया है। इस सूत्र में परिगणित पदार्थों का ही उद्देश्य लक्षण और परीक्षा इस क्रम से निरूपण किया गया है। प्रमाण इन 16 पदार्थों में प्रथम उद्दिष्ट है प्रमाण। प्रमा का जो करण होता है उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमा पद से यथार्थ अनुभव अभीष्ट है। करण पद का साधकतम अर्थ अभीष्ट है, अर्थात व्यापारवत जो असाधारण कारण उसे करण कहा जाता है। कारण दो प्रकार के होते हैं, साधारण कारण और असाधारण कारण। साधारण कारण उसे कहा जाता है जो कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, जैसे कि ईश्वरेच्छा, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय कृति, दिक् काल, अदृष्ट आदि साधारण कारण है, क्योंकि ये सभी कार्यों के प्रति कारण है। जो कुछ विशेष कार्यों के प्रति कारण है उसे असाधारण कारण कहा जाता है, जैसे घट आदि के प्रति कारण दंडादि असाधारण कारण है। अब प्रश्न होता है कि कारण किसे कहा जाए। इस प्रसंग में तर्कभाषाकार ने कारण के बारे में बतलाया है कि जिसका कार्य के प्रति पूर्व भाव नियत और अन्यथा सिद्ध है उसे कारण कहा जाता है। इस कारण के तीन भेद किए गए हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। जिसमें समवेत कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहा जाता है, जैसे घट के प्रति कपाल और घट रूप के प्रति घट। कार्य समवाय कारण में प्रत्यासन्न होकर जो कारण होता है उसे असमवाय कारण कहा जाता है, जैसे तंतुओं का संयोग तंतुओं में प्रत्यासन्न होकर पट के प्रति कारण होता है, वह पट का असमवाय कारण है। इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण होता है उसे निमित्त कारण कहा जाता है, जैसे विमादि पट के निमित्त कारण होते हैं। इस प्रकार प्रमाणों का निरूपण करने के प्रसंग में कारणों का भी तर्क भाषाकार ने निरूपण किया है, और अंत में प्रश्न उठाया है कि प्रमा के प्रमाता प्रमेय आदि कारणों के रहते हुए इनमें से करण कौन है। फिर समाधान किया है कि प्रमाता और प्रमेय के रहने पर भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इंद्रिय संयोग आदि के रहने पर अविलंब ही प्रमा की उत्पत्ति होती है, इसलिए इंद्रिय संयोग आदि ही प्रमा के कारण है। सत्यपि प्रमातर प्रमेय च प्रमाणोत्पत्तेरिंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेरतः इंद्रिय संयोगादिदेव करणम। संख्या 10 तर्क भाषा। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द बोध रूप प्रमा के चार होने से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये प्रमाण भी चार हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रमा को प्रत्यक्ष प्रमा और उसके करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार की होती है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होने पर नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु मात्र का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान होता है उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमा कहा जाता है। निर्विकल्पक के बाद नाम जाति की योजना से सहित यह घट है, यह ब्राह्मण है, इस प्रकार जो विशेषण और विशेष का अवगाहन करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है उसे संकल्पक प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा के कारण भी तर्क भाषा के अनुसार तीन है, इंद्रिय, इंद्रियात, संनिकर्ष और ज्ञान। कहीं पर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण होती है, वैसे निर्विकल्पक ज्ञान का करण होने के कारण इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण होती है, तथा इंद्रियात संनिकर्ष व्यापार होता है। सविकल्पक ज्ञान के प्रति इंद्रियात संनिकर्ष करण होता है और निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार बनता है। उक्त सविकल्पक ज्ञान के बाद हानोपाक्षादानोपेक्षा बुद्धियां क्रमशः यथा योग्य होती हैं। ये बुद्धियां भी प्रत्यक्ष प्रमात्मक ही हैं। इनके प्रति निर्विकल्पक ज्ञान करण है तथा सविकल्पक ज्ञान व्यापार है। तर्क संग्रह आदि ग्रंथों में जैसा निरूपण किया गया है कि प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रियां ही करण होती हैं और इंद्रिया संनिकर्ष व्यापार होता है, उस मत का यहाँ पर अत्र कश्चिदाह करके उल्लेख किया है। संनिकर्षों का विभाग मुक्तावली और तर्क संग्रह के समान ही है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव। द्रव्यों का प्रत्यक्ष संयोग संनिकर्ष से द्रव्य समवेत गुणकर्म सामान्य का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय संनिकर्ष से द्रव्य समवेत समवेत गुणत्व कर्मत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय संनिकर्ष से शब्द का प्रत्यक्ष समवाय व्याकरण में श्रोत्रावच्छिन्न समवाय संनिकर्ष से शब्दत्व कत्व खत्वादि जातियों का प्रत्यक्ष श्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय संनिकर्ष से तथा अभाव और समवाय का प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव संनिकर्ष से होता है। अनुमान प्रमाण, अनुमति प्रमा का करण अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तर्क भाषाकार के अनुसार लिंग परामर्श ही अनुमति करण होने के कारण अनुमान कहलाता है। व्याप्ति के बल से अर्थगमक होता है। लिंग जैसे धूम अग्नि का गमक होने से लिंग है। साहचर्य नियम रूप व्याप्ति का ग्रहण हो जाने पर धूम हेतु अग्नि का अनुमापक होता है, अतः लिंग है, उसका परामर्श ही अनुमति करण होता है। यहाँ पर नवीन न्यायिकों से तर्क भाषाकार का वैमत्य है। नवीन न्यायिकों के अनुसार व्याप्ति ज्ञान अनुमति करण है और परामर्श व्यापार है, जबकि तर्क भाषाकार के अनुसार परामर्श ही अनुमति करण है। यह अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थानुमान अपने ज्ञान के लिए कारण होता है और परार्थानुमान उसे कहते हैं जिसमें कोई स्वयं धूमादि हेतु साध्य का अनुमान करके दूसरे को समझने के लिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करता है। व्याप्ति के भेद से अनुमान के तीन भेद होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियों और दृष्टांतों वाला अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय व्याप्ति और दृष्टांत वाला केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी दृष्टांत और व्याप्ति वाला केवल व्यतिरेकी कहा जाता है। उपमान प्रमाण, उपमिति प्रमा का करण जो कि सादृश्य ज्ञान होता है को उपमान प्रमाण कहा जाता है। जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है। इस अतिदेश वाक्य को किसी आरण्यक पुरुष से सुनकर वन में गया हुआ कोई ग्रामीण जब उस गो सादृश्य विशिष्ट पिंड को देखता है और तदनंतर गो सादृश्य का जो ज्ञान होता है वही उपमान प्रमाण है। उसके द्वारा यह पिंड गवय शब्द से वाच्य है। इस प्रकार जो संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति होती है उसी को उपमिति प्रमा कहते हैं। शब्द प्रमाण, आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। यथाभूत अर्थ का उपदेष्टा पुरुष ही आप्त पद से कहा जाता है। आकांक्षा, योग्यता और संधि वाले पद का समूह ही वाक्य कहा जाता है। आकांक्षा, योग्यता, संधि वाले पदों का जो आप्तोच्चारित समूह उससे होने वाला जो बोध वही शब्द बोध विकट में प्रमा कहलाता है। इन चारों प्रमाणों के अलावा भी अन्य दार्शनिक अर्थापत्ति और अभाव नमक प्रमाण स्वीकार करते हैं। तर्क भाषाकार इनको अलग प्रमाण नहीं मानते, अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं और अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। इसलिए अभाव का ग्रहण कराने के लिए अभाव नमक प्रमाणांतर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसंगवशात प्रमाण के परतस्त्व का भी प्रतिपादन तर्क भाषाकार ने किया है। प्रमेय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग ये 12 प्रमेय हैं। आत्मा, आत्मत्व जाति वाला है। आत्मा प्रमेय,
यह आत्मा देह इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त प्रमेय प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न नित्य और विभू है। मानस प्रत्यक्ष का यह आत्मा विषय होता है और बुद्धि आदि हेतुओं से अनुमेय है। यहाँ पर तर्क भाषाकार ने ईश्वर की कोई चर्चा नहीं की है। शरीर उच्च आत्मा का भोगायतन अंत्यावयवी है। शरीर भोग पद से सुख और दुख के साक्षात्कार का ग्रहण है। हित प्राप्ति और अहित परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया को ही चेष्टा कहते हैं। उस चेष्टा का आश्रय होना भी शरीर का लक्षण है। इंद्रिय शरीर से संयुक्त जो ज्ञान करण अतिंद्रिय पदार्थ उसे इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियां छह हैं: घ्राण रसना चक्षु त्वचा श्रोत्र और मन। अर्थ अर्थ पद से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय तथा निषेध मुख अभाव का ग्रहण है। समवाय कारण या गुणाश्रय को द्रव्य कहा जाता है। ये द्रव्य पृथ्वी जल तेजवायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन है। पृथ्वी जाति वाली पृथ्वी है। इसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व और संस्कार ये 14 गुण रहते हैं। ये नित्य और अनित्य दोनों है। परमाणु रूपा नित्य है और गणादि रूपा अनित्य है। इसके रूप रस गंध स्पर्श पाकज है। जलत्व जाति वाला जल है। पृथ्वी में जो 14 गुण है उनमें से गंध को छोड़कर और स्नेह को जोड़कर 14 गुण इसमें भी रहते हैं। रूपादि अपाकज हैं। तेजस्तु जाति वाला तेज है। दिव्य भौम उदर्य और आकरज के भेद से 4 प्रकार का होता है। इसमें रूप स्पर्श संख्यादि 5 परत्व अपरत्व द्रवत्व और संस्कार ये 11 गुण रहते हैं। वायुत्व जाति वाला वायु है। स्पर्श संख्यादि 5 परत्व अपरत्व और विगाख संस्कार ये 9 गुण वायु के हैं। शब्द गुण वाला आकाश है। शब्द रूप हेतु के द्वारा ही इसका अनुमान किया जाता है। काल और दिशा में केवल संख्यादि 5 गुण ही रहते हैं। दैशिक परत्व अपरत्व से दिशा का और कालिक परत्व अपरत्व से काल का अनुमान किया जाता है। आकाश काल और दिशा ये तीनों एक एक है, नित्य है और विभू है। आत्मा का तो पृथक निरूपण किया ही जा चुका है। मनस्त्व जाति वाला मन है। यह अणु है। आत्मसंयोग अंतरिंद्रिय है। यह सुखादि की उपलब्धि का कारक है और नित्य है। इसमें संख्यादि 5 अपरत्व अपरत्व और विगाख्य संस्कार ये 8 गुण रहते हैं। प्रति आत्मा में नियत होने से ये अनंत है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार के भेद से गुण 24 हैं। चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण है। रूप पृथ्वी जल और तेज में रहता है। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र भेद से 7 प्रकार का है। रसना से ग्राह्य गुण है रस। पृथ्वी और जल में रहता है। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त भेद से 6 प्रकार का है। घ्राण से ग्राह्य गुण है गंध। पृथ्वी में रहता है और सुरभि और असुरभि 2 प्रकार का है। त्वचा मात्र से ग्राह्य गुण स्पर्श है। पृथ्व्याल 4 में रहता है। शीत उष्ण अनुष्णाशीत 3 प्रकार का होता है। एकत्वादि व्यवहार की कारण संख्या है। मानव व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण है। पृथक व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व है। संयुक्त व्यवहार का कारण संयोग है। विभक्त प्रत्यय का कारण विभाग है। ये 5 सामान्य गुण हैं। पर और अपर व्यवहार के असाधारण कारण परत्व और अपरत्व हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दैशिक और कालिक। आद्य पतन का असमवाय कारण है गुरुत्व। पृथ्वी और जल में रहता है। आद्य संदन का असमवाय कारण है द्रवत्व। पृथ्वी जल और तेज में रहता है। स्नेह चिकनेपन को कहते हैं, केवल जल में रहता है। शब्द सूत्र से ग्राह्य होता है और आकाश मात्र में रहता है। अर्थ को प्रकाशित करने वाली है बुद्धि। सुख का अर्थ है प्रीति, दुख का अर्थ है पीड़ा। राग को इच्छा, क्रोध को द्वेष, उत्साह को प्रयत्न कहा जाता है। सुख दुख के क्रमशः असाधारण कारण धर्म और अधर्म है। बुद्धि से लेकर अधर्म पर्यंत आत्मा के गुण है। संस्कार व्यवहार का असाधारण कारण है संस्कार। इसके
तीन भेद हैं, वेग भावना और स्थिति स्थापक। वेग पृथ्व्याद चार द्रव्यों और मन का, भावना आत्मा मात्र का और स्थिति स्थापक स्पर्शवत द्रव्यों का विशेष गुण है। कर्म के उच्छेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन के भेद से पांच प्रकार होते हैं। अनुगत प्रतीति का कारण है सामान्य, द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। यह नित्य एक और अनेक में समवाय संबंध से रहती है। पर और अपर के भेद से सामान्य दो प्रकार का होता है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला व्यावृत्ति बुद्धि का कारण विशेष नित्य होता है। काल दिक मन और पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में विशेष रहता है। अयुत सिद्ध अपृथक सिद्ध दो पदार्थों के बीच संबंध समवाय कहलाता है। निषेध मुख प्रमाण से गम्य अभाव रूप एक सातवां पदार्थ भी है। यह दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और भेद। संसर्गाभाव के तीन भेद हैं, प्रागभाव ध्वंस और अत्यंताभाव। उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का प्रागभाव रहता है। उत्पन्न वस्तु का कारण में जो अभाव उसे ध्वंस कहते हैं। त्रैकालिक अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। तादात्म्य वच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव भेद कहलाता है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये बुद्धि के पर्याय हैं। ये दो प्रकार की है, अनुभव और स्मरण। अनुभव के दो भेद हैं, यथार्थ और अयथार्थ। अर्थ के वास्तविक स्वरूप से विपरीत अर्थ को न बताने वाला यथार्थ और अर्थ के वास्तविक स्वरूप के विपरीत अर्थ को बताने वाला यथार्थ अनुभव कहलाता है। यथार्थ के प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द ये चार भेद हैं। यथार्थ के संशय तर्क और विपर्य ये तीन भेद होते हैं। स्मरण के भी यथार्थ और अयथार्थ दो भेद हैं। मन मन अंतरिंद्रिय है, अर्थ प्रमेय के अंतर्गत इसका निरूपण कर दिया गया है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति के दो भेद हैं, धर्म और अधर्म। ये जगत व्यवहार के कारण है। दोष राग द्वेष और मोह ये तीन दोष है। प्रेत्यभाव मरकर पुनः उत्पत्ति ही प्रेत्यभाव है, अर्थात आत्मा के पूर्व देह की निवृत्ति होकर देहांतर की प्राप्ति ही प्रेत्यभाव है। फल दुख सुख साक्षात्कार रूप भोग ही फल है। दुख पीड़ा को दुख कहा जाता है, अर्थ पदार्थ के अंतर्गत भी निरूपण किया गया है। अपवर्ग दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, अपवर्ग है। दुख पद से शरीर छह इंद्रिया छह विषय इंद्रियों के छह बुद्धियां सुख और दुख ये किस पकड़े जाते हैं। संशय एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का विमर्श संशय कहलाता है। यह तीन कारणों से होता है, विशेष दर्शन न होने की स्थिति में समान धर्म दर्शन से, विप्रतिपत्त वाक्य से, असाधारण धर्म ज्ञान से। प्रथम कारण से उच्चैस्त आदि समान धर्म दर्शन से स्थाणु है या पुरुष ये संशय होता है। एक कहता है कि शब्द नित्य है, दूसरा कहता है अनित्य है। यहाँ पर शब्द नित्य है या अनित्य या संशय द्वितीय कारण से होता है। गंध केवल पृथ्वी में रहता है, न तो किसी अन्य नित्य में रहता है न अनित्य में रहता है, अतः असाधारण धर्म हुआ। उसके ज्ञान से विकट में तृतीय कारण से संशय होता है कि पृथ्वी नित्य है या अनित्य। प्रयोजन जिससे प्रेरित होकर मनुष्य संसार के विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की हानि के लिए प्राणी मात्र की प्रवृत्ति होती है, अतः यही प्रयोजन है। दृष्टांत वादी और प्रतिवादी को जिस अर्थ में समान प्रतिपत्ति हो, अर्थात जो अर्थ दोनों को समान रूप से मान्य हो, वह अर्थ दृष्टांत है। सिद्धांत जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत हो उसे सिद्धांत कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत तथा अभ्युपगम सिद्धांत। सभी शास्त्रों को मान्य सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जो मत एक शास्त्र में तथा उसके समान शास्त्रांतर में स्वीकृत होता है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जिसे स्वीकार किए बिना अभिमत सिद्धांत की प्रतिष्ठा न हो उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अन्य शास्त्र का जो सिद्धांत विचार मात्र करने के लिए स्वीकृत हो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अवयव अनुमान वाक्य का एक देश है अवयव। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन ये पांच वाक्य हैं। साध्य का पक्ष में निर्देश प्रतिज्ञा हेतु प्रतिपादक वाक्य हेतु है। व्याप्ति सहित दृष्टांत कथन उदाहरण है। पक्ष में व्याप्त विशिष्ट का उपसंहार उपनय है तथा पक्ष में साध्य का उपसंहार निगमन है। तर्क व्याप्त के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है। निर्णय निर्णय अवधारणात्मक ज्ञान को कहते हैं। वाद तत्व जिज्ञासु की कथा वाद कहलाती है अर्थात तत्व की जिज्ञासा से जो विचार चर्चा की जाती है उसे वाद कहते हैं। जल्प विजय की इच्छा से जो विचार चर्चा होती है उसे जल्प कहते हैं। इसमें प्रतिपक्षी को पराजित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। वितंडा अपने पक्ष की स्थापना न करके जिसमें परपक्ष खंडन मात्र होता है उसे वितंडा कहते हैं। जल्प और वितंडा में अंतर इतना ही है कि जल्प में स्वपक्ष का उपस्थापन होता है किंतु वितंडा में नहीं होता है। हेत्वाभास पक्ष सत्व सपक्ष सत्व विपक्षासत्व अबाधित साध्यकत्व और असत प्रतिपक्षत्व ये हेतु की अनुमापकता के संपादक हैं। इनमें से किसी से भी जो रहित होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। इसके असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम और कालत्यापदिष्ट ये पांच भेद हैं। छल दूसरे अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द के अर्थांतर की कल्पना करके दोष देना छल है। जाति गलत उत्तर को जाति कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। निग्रह स्थान पराजय का हेतु होता है। इसके भी अनेक भेद हैं। इस प्रकार से ग्रंथकार ने इन पदार्थों का ग्रंथ में निरूपण किया है। विस्तार से तो ग्रंथ और ग्रंथ व्याख्या में ही देखना चाहिए। सच्चिदानंद मिश्र मयूख।